नमस्कार मित्रगण, हम रेडियो मधुबन के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं संस्कृत। हमारे कार्यक्रम पठामी संस्कृतम में मित्रों, संस्कृत और भारतीय भाषाओं में एक बहुत सुंदर रिवाज है कि अच्छी अच्छी बातें हम अक्सर पद्य के रूप में कहते हैं, अर्थात उसे कोई श्लोक बना दिया, कोई दोहा बना दिया, उसमें एक लय बना दी ताकि वह सुनने में श्रवणीय लगे, सुमधुर लगे, उसे गाया जा सके इत्यादि। संस्कृत में प्रायः जो भी पद्य स्वरूप में लिखा गया उसमें कई छंदों का प्रयोग हुआ। हम पिछले एक एपिसोड में छंदों की बात कर चुके हैं और संस्कृत में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला छंद है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप शब्द का अर्थ ही होता है अत्यंत सरल, तो यह अनुष्टुप छंद अक्सर पद्य रचना के लिए प्रयोग में लाया जाता है और हमारे कई कई सुभाषित हैं, हजारों की संख्या में हमारे संस्कृत के ग्रंथ भंडार में सुभाषित हैं जो प्रायः अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। सुभाषित अर्थात सुभाषित, जिसमें भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से कोई बात कही गई हो, समझाई गई हो, जो दिल को छू ले, जो मन को पसंद आ जाए, मन भावन हो, तो ऐसी बातें सुभाषितों में लिखी जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ सुभाषित और देखना कि कैसे सरल सुभाषित लिखे गए और कैसे उनका अर्थ समझना बहुत ही सरल है। कई बार सुभाषित रचने वाले कवि एक युक्ति और करते हैं। वह सुभाषित की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसमें एक ही विभक्ति बार बार लगे ताकि उसको समझना बहुत ही सरल हो। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ सुभाषित और मुझे पता है कि जैसे ही मैं सुभाषित पढ़ूंगी तो मेरे अर्थ बताने से पहले ही तुम्हें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। मेरे बताए गए अर्थ से तुम अपने अर्थ का मिलान करके देखना तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम्हें अब संस्कृत कितनी अच्छी तरह से आने लगी है। तो ये अपने आप की परीक्षा लेने का एक मौका है। आओ सुनते हैं। पहला सुभाषित है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अब इसमें देखो कि बार बार कुतो शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है कहाँ हो सकती है, कहाँ मिल सकती है, कहाँ संभव है, और स्य लगा करके षष्ठी विभक्ति कई शब्दों की बनी है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है का कि, जैसे अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी व्यक्ति है तो आलसी की कहाँ विद्या, तो आलसी की हो गई षष्ठी। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी की कहाँ विद्या। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं, अविद्य, उसका कहाँ धन। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं, उसे कहाँ से मित्र मिले। और अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके पास मित्र नहीं, उसे कहाँ से सुख मिले। तो इसका अर्थ कितना सरल और सुंदर तरीके से समझ में आ जाता है। आओ इसे दोहराते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। यहाँ एक बात तुम्हें गौर करनी होगी कि शब्द है कुतः, कहाँ, लेकिन कहीं कहीं पर हमने कुतो भी लिखा है, क्योंकि यह जो अंतिम विसर्ग है इसका ओकार में परिवर्तन हो जाता है, ये ओ बन जाता है, लेकिन कहाँ ओ रहेगा और कहाँ विसर्ग रहेगा यह उसके अगले शब्द पर निर्भर करता है। तो विद्या, धन, मित्र, ये शब्द जब आगे आए तो विसर्ग का परिवर्तन होकर के वह ओकार में बदल गया, लेकिन जब आगे सुखम स लगा तो विसर्ग का ओकार में परिवर्तन नहीं हुआ, वह विसर्ग ही रहा। तो ये संस्कृत में एक छोटा सा नियम है कि अंतिम विसर्ग जो है वह कब विसर्ग रहेगा और कब ओ में बदल जाएगा, यह उसके आगे आने वाले शब्द के ऊपर निर्भर करता है। चलो, ये तो शास्त्र हो गया, साइंस हो गया, उसका गणित हो गया, व्याकरण हो गया, लेकिन आनंद लेने के लिए अगले सुभाषित पर चलते हैं। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यहाँ देखो, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है चक्रेण, अर्थात चक्र के द्वारा, चक्र से, और उसके पहले जो शब्द लगा एक, लेकिन उस एक शब्द में भी तृतीय विभक्ति लगती है, क्योंकि एक शब्द एक विशेषण के रूप में यहाँ आया है, और संस्कृत में विशेषणों के लिए नियम है कि विशेषण के आगे जो संज्ञा लगेगी वह जिस विभक्ति में होगी विशेषण में भी वही विभक्ति लगेगी। इसलिए एक शब्द का रूप हो गया एकेन, एकेन चक्रेण, अर्थात एक पहिए के द्वारा। यथा ह्येकेन चक्रेण, यथा ही एकेन चक्रेण, जिस प्रकार एक ही चाक रहे तो न रथस्य गतिर्भवेत्, रथ की गति नहीं होती है, रथ आगे नहीं चल सकता है, उसे दो पहिए चाहिए, दो चाक चाहिए। एवं परुषकारेण, इसी प्रकार, यथा का अर्थ हुआ जिस प्रकार, उसका उत्तर हुआ तथा या एवं, उसी प्रकार परुषकारेण, केवल प्रयत्न ही प्रयत्न है, विना दैवम, लेकिन दैव साथ नहीं है तो न सिद्ध्यति, तो फिर सफलता नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है। तो पुरुषार्थ के साथ साथ थोड़ा सा दैव भी आवश्यक है, यह इस सुभाषित में कहा गया है। मानो वह रथ के दो पहिए हों, तो दोनों पहिए जब होंगे तो रथ आगे चलेगा और तेज गति से आगे चलेगा। इसीलिए भगवद गीता में भी एक जगह श्लोक आया है कि अधिष्ठान तथा कर्ता तथा करण, करण अर्थात संसाधन, अधिष्ठान का अर्थ हुआ एक पवित्र शुभ संकल्पना, कर्ता का अर्थ हुआ करने वाला, करण का अर्थ हुआ संसाधन। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, और इनके साथ करने वाला व्यक्ति है, संसाधन है, संकल्प है, लेकिन उसके साथ विविध चेष्टाएं अर्थात विविध रूप से प्रयास अगर ना हो, और उसके साथ साथ दैवम चैव अत्र पंचमम, और पांचवी वस्तु जो चाहिए किसी बात की सिद्धता के लिए वह है दैव। तो भगवद गीता में बहुत खूबसूरती से इसको कहा गया है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टाः दैवम चैवात्र पंचमम। तो ये पांच चीजें जब रहे तो कार्य सिद्धि अवश्य होती है। यहाँ पर भी पुरुषार्थ जब कहा गया है तो उसमें संकल्पना, कर्ता, करण और विविध प्रयास, ये सारे सम्मिलित हो गए एक शब्द में पुरुषार्थ, और दूसरा पहिया हो गया रथ का दैव। अब सोचने सोचने की बात है, कोई कह सकता है कि यह तो आदमी को दैव की तरफ झुकाने वाली बात है, अपने प्रयासों से उसे विमुख कराने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जब हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं तो हमें रुक करके सोचना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य है जिस कारण प्रयास सफल नहीं हुए हैं, तो फिर उस असफलता से हमें दुख ना हो, यह भी आवश्यक है। बिना दुख किए हम अगले प्रयासों के लिए संबल लेकर के चलें, इसलिए कभी कभी दैव को मान लेना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक ऊर्जा देने के लिए, आगे ले चलने के लिए आवश्यक होता है। खैर, अब यह शास्त्र और व्याकरण और सामान्य अर्थ से अलग हट करके एक बहुत गहन चिंतन की बात हो गई, तो इसे भी अब छोड़ते हैं और चलते हैं अगले सुभाषित पर। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्रचंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगतिः। यहाँ देखो सारे प्रथमा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। कहते हैं चंदनम शीतलम लोके, चंदन जो है वह शीतल पाया जाता है, लोके मतलब इस संसार में। हम जानते हैं कि चंदन शीतल होता है, यह चंदन प्रथमा विभक्ति है, करता है। और शीतलम क्यों लगा? क्योंकि शीतल विशेषण है चंदन के लिए, तो विशेषण भी प्रथमा ही विभक्ति लेगा, क्योंकि चंदन की विभक्ति प्रथमा की है। चंदनादपि चंद्रमा, हाँ, और चंदन से भी शीतल चंद्रमा है। चंद्र चंदनयोर मध्ये, और चंद्रमा और चंदन दोनों की शीतलता को जान करके भी ये कहा जा सकता है कि इन दोनों से बढ़ करके कोई और वस्तु है जो इनसे भी अधिक शीतल है। वह वस्तु क्या है? शीतला साधु संगति ही। सज्जन पुरुषों की अगर संगति हो तो वह इन दोनों से भी अधिक शीतल होती है। मित्रों, आज का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में भी हम कुछ और सुभाषित पढ़ेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो।